माशाल्लाह आप सब के जो शेयरिंग्स थे सबकी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हम सब के लिए इंफॉर्मेटिव होती है ना, बिकॉज़ एक्सपीरियंस जितना कुछ हमें सिखाता है वो प्रैक्टिकलिटी लेकर आती है, फिर पता चलता है कि अच्छा इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं। बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं इंशाल्लाह ताला, इवन दो के रिकैप तो अभी फिलहाल थॉर्डली नहीं कर सकते जब तक कि हमारे साथ ऑन साइट से वो रेडी होते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम थोड़ी सी जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसको गो थ्रू करते हैं। सबसे पहली चीज़ आप ये बता सकते हैं कि इंसान को आखिरत में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा नुकसान देने वाली है जो हम इस दुनिया में करते हैं। आज के लेसन से हमने वो चीज़ पढ़ी, क्या चीज़ है जो हमें आखिरत के हिसाब से बहुत नुकसान पहुंचाती है। ख्वाहिशात, ख्वाहिश नफ्स, बिल्कुल ख्वाहिश नफ्स। रिमेंबरिंग द पॉइंट दैट वी आर, एक सेकेंड प्लीज। Remembering the point that we are registering in our deeds book and being conscious that does this deed suit for Hamil al-Quran will help us reform better, inshallah. ये बहुत बहुत अच्छा हमारे लिए जज करने का एक तरीका है कि हम कुरान के ऊपर अपने आप को रखें। अगर हम कुछ भी खाते पीते बात करते चलते फिरते या हम पहनते हैं मामलात करते हैं, ये बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है ना कि जब हम इस नज़र से देखने लगें कि मैं अल्लाह को अच्छी लग रही हूँ, क्या कुरान के साथ मुझे इनके लोग मुझे इस तारुफ से जानते हैं और फिर इस हिसाब से क्या फिर मुझे ये चीज़ सूट करती है कि नहीं, है ना। और फॉलोइंग द डिज़ायर्स, ख्वाहिशों को पूजना, और बिल्कुल सही। तो क्या हम इसको शिर्क कह सकते हैं जी, ख्वाहिशात को इस तरह से उनकी यानी जो बस चाहा वो कर लिया। जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक कि हम इसको जी वी टेक इट टू सच अ ग्रेट लेवल काइंड ऑफ शिर्क, बिल्कुल सही कि ये काइंड ऑफ शिर्क है, शिर्क के अंदर आ जाता है। पर कैसे कैसे हम इसको कहें कि ये शिर्क के अंदर आ गया, हाउ, क्या इसकी हम एक्सप्लेनेशन देंगे। जी कैसे कहेंगे हम इसको कि कैसे शिर्क बन जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला की मोहब्बत सबसे आगे होनी चाहिए जबकि हम अपनी ख्वाहिशात को आगे रखते हैं। बिल्कुल सही, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। किसी उस्ताद हमारे साथ रेडी हैं तो इंशाल्लाह उनके साथ कंटिन्यू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। والذين في
حسب الله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله. میرا خیال ہے کہ ابھی اتنا تو آپ سب کو بھی پتہ چل ہی گیا نا کہ جب تک سیڈز پوری نہیں ہوتی میرے زبان سے کچھ نکلتا ہی نہیں ہے, تو آپ لوگ سب اس کا خیال رکھا کریں. ٹھیک ہے, چلتے ہیں آگے. یہی ٹیسٹ ہے نا, ہم اتنا سا بھی نہیں کر سکتے اللہ کے راستے میں جہاد کے ایک جلدی جلدی کھائیں. کس نے پورا کھانا کھا لیا, نماز پڑھ لی, وہ ہاتھ کھڑا کر, الحمدللہ. تو جب اتنے لوگ کر سکتے ہیں تو پھر ہم بھی کر سکتے ہیں نا, ان شاء اللہ تعالیٰ. چلتے ہیں آگے. اب آیت نمبر 53 سے تھوڑا سا بات کو مزید سمجھیں گے. بچوں کو بھی کنٹرول میں رکھیں, پاس بٹھا لیں بس. جب یہ بھاگتے چلتے پھرتے ہیں نا, پھر یہ اپنا مطلب توجہ زیادہ لیتے ہیں. چلیے اب آگے ہم دیکھیں گے اس کو کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے سبق رکھا. صرف چند سیکنڈ میں ہم شروع کریں. آپ لوگ سب اپنی بکس کھول لیں کیونکہ وہ پھر تھوڑی سی آوازیں ایکسٹرا ہوتی ہیں, انیوژل. آن لائن پہ آواز ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب ہم تھوڑا سا اگلی آیتوں کا مزاج سمجھ کے پھر انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں. ابھی ہم نے جہاد کبیر کی بات کی اور دیکھا کہ آج پریکٹیکل کوششوں کی ضرورت ہے. باتیں کرنا بہت آسان ہے, قرآن کو پڑھنا بھی بہت آسان ہے, لیکن اس قرآن سے ایک ایسی نسل بنانا کہ جو حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے چور ہو, قرآن جن کا منشور ہو, حدیث جن کا اسوہ ہو, ایسے لوگ جو ہیں وہ حقیقت میں قوموں میں انقلاب پیدا کرتے ہیں. آج کے دور میں جس انقلاب کی بات عموماً کی جاتی ہے وہ انقلاب تیروں اور تلواروں سے نہیں, علم سے آئے گا. اور علم بھی کون سا؟ پیور نتھرا ہوا, بالکل وہی اللہ نور السماوات والی مثال ذہن میں رکھ لیں کہ نہ مشرقی نہ مغربی. اسلام کی اس طرح سے تعلیم اور تربیت تو جیسے وہ ہے, نہ تو ایکسٹریم پہ تقویٰ کے نام پر لوگوں کے لیے اتنا مشکل دین پیش کرا جائے کہ چند لوگوں کے سوا اس کو باقی قبول نہ کر سکیں, اور نہ خواہشوں کے پیچھے بھاگنے والوں کو خوش کرنے کے لیے اس کو بہت نرم کیا جائے. بالکل اس کی اصل انٹینسٹی پہ رکھتے ہوئے لے جائیں گے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب ہمارے اندر کے امراض دور ہو جائیں گے تو باہر کی ساری بیماریاں بھی ختم ہوں گی. سورۃ یونس آیت 57 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بشفاء لما فی الصدور. اس قرآن میں, اس کتاب میں سب دل کی بیماریوں کا علاج ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری بیماریوں کا علاج کروا دیں. اس کے بعد آیت نمبر 53 سے لے کر چند آیتیں کائنات میں سے آپ کو پھر چند چیزیں سکھائیں گی. پیچھے ہم نے بادلوں کو دیکھا تھا, اسی طرح ہم نے رات اور دن اور صبح و شام کے آنے جانے کو دیکھا. اب آپ دیکھیں گے, ایک سوال ذہن میں رکھیے, پھر اس کا جواب آپ کو انشاءاللہ اگلی آیتوں میں ملے گا. ہم تو بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں مگر ہمارے حالات موافق نہیں. ہمارے دل میں تو بڑی خواہشیں ہیں لیکن لوگ میرا ساتھ نہیں دیتے. میں بہتوں کو بلاتی ہوں, کوئی آتا نہیں. ان سب کا جواب اب آپ کو کائنات سے ملے گا. آیت 53 سے اگلی آیات میں ہم دیکھیں گے, آیت 51 سے بلکہ یہ موضوع چلا ہوا ہے, لیکن یہاں سے ہم 53 سے تقریباً آیت نمبر 62 میں دیکھیں گے کہ مخالفتوں کے باوجود اپنا کام کرتے جاؤں. فطرت کا اصول ہے کہ فرکشن موجود ہے. فطرت از ایکول ٹو فرکشن. کائنات میں بہت ساری ایسی چیزیں کام کر رہی ہیں جن کے لیے بہت ساری مخالفتیں. اس میں سے ایک چیز آیت 53 وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ, اور وہی ہے اللہ. کون سا اللہ؟ جس کے دین کو تم پھیلانا چاہتے ہو, جس کے بندوں کو آگ سے بچانا چاہتے ہو. کیا کیا اس نے؟ مرج البحرین, جس نے چلا دیے دو دریا. مرج کا لفظ بالکل انگلش والا ہی لفظ ہے, مرج کرنا. مرج کیا ہوتا ہے؟ جوڑنا, ملا دینا. تو مرج عربی زبان میں کہتے ہیں جانوروں کو چرنے کے لیے چھوڑ دینا. مروج عربی زبان میں چراگاہ کو کہتے ہیں, وہ فیلڈ جہاں سے جانور کھاتے ہیں. دو چیزوں کا اس طرح ملنا کہ انفرادی حیثیت برقرار نہ رہے. مثلا آپ دودھ اور آم ملاتے ہیں تو اس کو بلنڈ کر دیتے ہیں, تو دودھ دودھ نہیں رہتا, آم آم نہیں رہتا, دونوں مل کے ایک نیا ٹیسٹ بناتے ہیں, اس کو مروج کہتے ہیں. عربی زبان میں امرن مریج کہتے ہیں پیچیدہ اور گڑ مڑ بات کو. یہ بھی قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے. تو گویا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتیں دکھائیں کہ دیکھو دو دریاؤں کو ملا دیا. کیسے ہیں وہ دریا؟ حاز ازبن فورات, یہ تو میٹھا ہے اور خوش ذائقہ. عزب کا لفظ ہے نا عین ذال با, یہ وہی لفظ ہے جس سے لفظ عذاب بھی ہے. अज़ कहते हैं मीठे को, तो जब ये अज़ाब की सूरत में आता है तो मुराद होता है मिठास ले जाने वाला। अब यह फ़र्क देखिए, अज़ाब किसको कहेंगे, टॉर्मेंट पनिशमेंट, अज़ाब की सूरत क्या है कि लज्जतों को ले जाने वाली चीज़, जिंदगी से मिठास चली जाती है जब बंदा अल्लाह ताला के अजाबों का शिकार हो जाता है। तो गोया के अल्लाह सुबहाना ताला ने यहाँ बता दिया कि एक है अजबुन मीठा खुश जायका, फुरात फरौता से, फरत अल माँ कहते हैं पानी के मीठे होने को, और अजबुन इसकी ताकीद है, जैसे उर्दू में कहते हैं ना मीठा शहद ठंडा यख, तो ये फुरात और अजब एक दूसरे की ताकीद है। इसके बरक्स दूसरा कैसे, वह हाज मिलहुन उजाज, दूसरा है नमक वाला नमकीन और खारी। मिल्ह का लफ्ज मीम लाम हा, ठीक है, नमकीन को कहते हैं, मलीहा नाम सुना होगा नमकीन, यानी कशिश वाली औरत, तो मिल्ह कहते हैं कड़वे को, अगर आप अरबी दुकानों से कुछ खरीदें तो नमक के ऊपर मिल्ह लिखा होता है। उजाज का लफ्ज हमजा, हमजा जीम जीम से, अज्जा, कड़वा नमकीन खारी, जब नमक बहुत ज्यादा होता है तो कड़वा हो जाता है ना, एक मीठा पानी और दूसरा नमकीन पानी। अल्लाह की कुदरत देखिए कि दोनों में मिलाप हो गया, दोनों चल रहे हैं साथ साथ। हाँ वजाला बैनहुमा बरज़खन, इन दोनों के दरमियान उसने एक पर्दा और मजबूत आड़ बना दी। वह हिजर महजूरा का लफ्ज जहां आड़ के तौर पे आ गया, नजर नहीं आता, लेकिन कोई ऐसी चीज है जो मीठे को मीठा रहने देती है, नमकीन को नमकीन रहने देती है, ये दोनों मिल गए। क्या पता चला, कड़वे लोगों के साथ तुम मीठे बने रहो। ये जो तुम कहते हो ना, लोग मानते नहीं, मेरे घर में मेरी चलती नहीं, मेरे ससुराल बड़े सख्त हैं, मेरी दोस्तें बहुत डोमिनेंट हैं, अल्लाह कहता है दोनों के साथ रहकर तुम मीठे हो ना, वो कड़वी बातें करते हैं तुम्हारे दीन पे, उन्हें तुम्हारा इस्लाम नहीं पसंद, तुम्हारा कुरान नहीं पसंद, बस तुम बैनहुमा बरज़खन की सूरत सूरत में एक डिस्टेंस के साथ साथ उनके साथ चलते ही रहो। यहाँ बरज़ख और हिजरा महजूरा क्या होगा, तुमने उन जैसी गलत चीजें नहीं इख्तियार करनी, आइडेंटिटी लूज नहीं करनी, चलते रहो। अगली आयत साथ पढ़ेंगे तो बात बहुत ही अच्छी समझ आएगी इंशाल्लाह। आयत 54 में, वहुवल्लज़ी खलक मिनल माई बशरा, और वही है जिसने पानी से पैदा किया इंसान को। पानी से यहाँ मुराद वो मादा भी है जिससे बच्चे की तख्लीक होती है, और आम पानी भी मुराद है, क्योंकि पानी की कमी या पानी का चला जाना जिस्म की मौत है, हर जानदार चीज इसी से पैदा की। तो अल्लाह ताला कहते हैं जरा अपने आप को तो देखो, फजअलहु नसबं व सिहरा, तो इसने बनाया इसके लिए नसब और ससुराली रिश्ता। व काना रब्बुक कदीरा, और आपका रब सब कुदरतों का मालिक है। अल्लाह सुब्हानहु तआला ने यहाँ देखिए रिश्तों की बात कर दी, इंसान पानी से बना और उससे फिर नसब बना, खून के रिश्ते नसब, और सहर कहते हैं ससुराली रिश्ते। लोग कहते हैं ससुराल का लफ्ज़ किधर है, तो कुरान में लफ्ज़ आपके सामने आ गया। सूरत का नाम फुरकान है, और फुरकान यहाँ क्या है, कुरान, कुरान एक फुरकान है। जब ये फुरकान जिंदगी में आता है तो इंसान मुतजाद माहौल में खिलाफे तबा चीज़ों में भी अपनी खूबसूरती जाहिर करता है और माहौल का हिस्सा नहीं बन जाता। देखिए, हक कड़वा होता है, बातिल मीठा होता है। ये जो कुरान का नूर आपके सीनों में जा रहे हैं ना, किसी वक्त पे हो सकता है कि लोग आपको कड़वा कहें, ये क्या स्टबननेस है, ये अब अबाया पहनोगी, अब सर पे स्कार्फ लोगी, अब ये नकाब है खींच के फेंकेंगे। आपने अपना ये रंग किसी के लिए छोड़ना नहीं है, डिस्टेंस के साथ हक को मानना है, एसिमिलेट नहीं होना, अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखना है। आप देखिए कि इंसान भी पानी से बना है ना, लेकिन कुछ इंसान मीठे होते हैं, कुछ कड़वे होते हैं, कुछ की जुबान इतनी कड़वी कि अल्लाह की बना, और कुछ की इतनी मीठी कि वो गालियां भी दे दें, गुस्से में कुछ बोल भी दें तो अच्छे ही लग रहे होते हैं कि कोई बात नहीं, अच्छा ही लग रहा है। अल्लाह ताला हमें फरमाते हैं कि देखो, जब दो मुख्तलिफ किस्म के पानी साथ रह सकते हैं तो तुम दूसरों के साथ क्यों नहीं रह सकते, तुम अपनी मिठास ना खोना कड़वों के साथ रहकर। अगर हम में से किसी को जिंदगी में किसी कड़वे बंदे से वास्ता पड़ जाए तो इस आयत को याद रख ले, तुम अपना काम करते रहो। एक जगह जब वो रह सकते हैं एक दूसरे का असर कबूल किए बगैर, बरज़ख़म पर्दा है बीच में, रुकावट है, तो तुम क्यों नहीं रह सकते। جیسے مکہ میں تھے لوگ، مخالف ماحول موجود تھا، کتنی موجیں تھیں، کتنے لوگ مختلف تھے، لیکن آپ اور آپ کے ساتھیوں نے اثر قبول نہیں کیا. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میجورٹی از اتھارٹی؟ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. حق تھوڑا تھا لیکن نکھر کے سامنے آ گیا. تو پھر تم اور میں کیوں نہیں اپنے اصل کو خوبصورت طریقے سے پیدا کرتے؟ اور اصل یہ جو ہجرم مہجور ہے نا، یہ ہے وہ فرق جو قرآن پڑھنے کے بعد طبیعتوں میں آتا ہے. دو لوگ ہوں، ایک دین سے دور ہے ایک دین والا ہے، دونوں کو مخالف ماحول ملے، جو دین سے دور ہے نا، یا وہ ڈپریشن میں چلا جائے گا، یا اپنی تلخ زبانی بد زبانی سے اس ماحول کو اور برا کر لے گا، اور یا لوگوں میں سچا ہونے کے لیے غیبتیں برائیاں کرتا رہے گا. اس کے برعکس جو سچا مومن ہوتا ہے، جس کے دل میں قرآن آ جاتا ہے، جس کی تربیت کے ساتھ تزکیہ بھی ہو جاتا ہے، جو صرف لفظوں کا حافظ اور عالم نہیں ہے، عمل کا بھی ہے، پھر اس کی زندگی میں واقعی تبدیلی آتی ہے. اب اس میں بات ہوئی ہے لفظ سحر کی، تو تھوڑا سا ایک کانسیپٹ کلیئر کر لیتے ہیں کہ سسرال کے کیا حقوق ہیں، کیا ہے بھی کہ نہیں. پہلی بات دیکھیے کہ اللہ کا کتنا شکر ہے کہ اس نے ہمارے لیے مختلف قسم کے رشتے بنائے. یہاں جو لفظ ہے نا نصب، تو نصب دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے ننہیال اور ایک ہے ددیال. ننہیال نانا سے نانی سے، یعنی ماں کی طرف کے رشتے دار، اور دوسری طرف دادا دادی یعنی باپ کی طرف سے رشتے دار، اور تیسرا رشتہ ہے سحر کا، سسرالی. لوگ کہتے ہیں کہ سسرال کے کدھر حقوق ہیں، کدھر ہے، کیا ہے، اور یقین کریں نماز روزہ حج زکوٰۃ میں لوگ پورے نمبر لے جاتے ہیں، لیکن رشتوں کے پل سرات سے گزرتے ہوئے ناکام ہو جاتے ہیں. اور یہ رشتوں کا پل اتنا باریک ہے، تنگ ہے، کہ واقعی یہ بال سے باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے. جب تک سچا تزکیہ نہ ہوا ہو انسان نہیں رہ سکتا. تو پہلا سوال یہ ہے کہ جو سسرال کے کدھر حقوق لکھے، قرآن کی آیت دکھائیں. تو وہ قرآن، وہ دین، وہ اسلام جو اجنبیوں کے ساتھ کہتا ہے قول للناس حسنا وبالوالدین احسانا، کیا وہ ساتھ دوسرے کمرے میں رہنے والوں کے کوئی حقوق نہیں رکھے گا؟ جس دن میں نیبرز کی بات ہے، غلاموں کی بات ہے، ملازموں کی بات ہے، کیا وہ دین ہمیں ان کی بات نہیں کہے گا کہ جن کی وجہ سے ہمارا سارا سٹیٹس ہے؟ ایک عورت کا شادی کے بعد سٹیٹس کیا باپ کی وجہ سے ہوتا ہے؟ بھائی کا سٹیٹس ہے، وہی ہے جو اس کے شوہر کا ہے. کروڑ پتی باپ کی اکلوتی بیٹی، شوہر اگر مزدوری کرتا ہے تو وہ مزدوری ہی ہوگی اس کا سٹیٹس. سارا میکا بھی باہر رہتا ہو اور آپ اگر کسی اندر کی گلی میں رہتے ہیں نا لاہور کی، تو آپ کے گھر میں چند چیزیں صاف پہچانی جائیں گی کہ یہ آپ کے میکے سے آئی ہیں تحفے میں. آپ کا کھانا پینا چلنا پھرنا وہی ہوگا جو آپ کے سسر آپ کے شوہر کا یا آپ کے ان لاز کا. تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خون کے رشتوں کو بڑی اہمیت دی ہے. عربی میں، اردو میں، انگلش میں ہم کہتے ہیں کہ بلڈ از تھکر دین واٹر، خون خون ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ وہ رشتے ہیں جو بنے بنائے ملتے ہیں، سحر کے رشتے بنانے پڑتے ہیں. سیدھی سی بات ہے، میں تو اسے ایک جملے میں سمیٹتی ہوں کہ نسب کے رشتے، محبت، ہمدردی، پیار، تعریف، توصیف اللہ نے خون میں ڈال دی. کچھ بھی نہیں بیٹی کرے گی ماں کو اچھی ہی لگے گی، کچھ نہیں بیٹا کرے گا باپ سے مار بھی کھا لے گا لیکن باپ کا خون دل اس میں رہے گا. ادھر کچھ نہیں کرنا، بیٹیاں کچھ نہیں کرتی ماؤں کے لیے، پھر بھی وہ ماؤں کی آنکھوں کا تارا لاڈ دیکھتی ہیں. لیکن سحر کے رشتے بنانے پڑتے ہیں کچھ بنیادوں پہ. سب سے پہلی چیز قربانی، خدمت، عاجزی، خوش گفتاری، گفتاری، معاملہ فہمی. یہ پانچ میں نے انگلیوں پہ گنے ہیں. ایک درس دیا تھا میں نے، 10 باتیں بچی کو بتائی تھی شادی کے موقع پہ کہ بیٹا اپنی دونوں انگلیوں کی پوروں پہ یہ 10 چیزیں لکھ کے لے جاؤ. تو وہی بات ہوگی جو کسی نے زبان سے پوچھا تھا کہ 32 دشمنوں کے بیچ میں رہتی ہو، تمہارے ارد گرد دانتوں کی باڑھ لگی ہے، پھر بھی تم کیسے خیر سے رہتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ اپنی نرمی کی وجہ سے رہتی ہوں، ادھر سے بچتی ہوں، ادھر سے بچتی ہوں. یہ رشتے خون والے نہیں ہوتے، اس میں کوئی جوش نہیں پڑتا، یہ شروع کے جذبات ہوتے ہیں صرف، وہی بعد میں توقعات پہ ڈھل جاتے ہیں، جیسا کرو ویسا پہ آ جاتا ہے. یہ آپ کے اپنے طریقے ہوتے ہیں، آپ کیسے ہیں. آج افسوس کی بات ہے، بہت ہی، آج امین کو کیا ہو گیا؟ امین آپ ادھر آئیں گے میرے پاس؟ آج کوئی بچہ پیچھے بول رہا ہے، کون ہے وہ؟ کلاس میں کیسے بولتے ہیں یہ دیکھیں ذرا، سب پیچھے مڑ کے دیکھیں اس کو، ناک پہ انگلی رکھتے، انگلی ناک پہ ہے. तो अब आपकी आवाज नहीं आएगी है इंशाल्लाह ताला। देखिए आजकल हमारे ताल्लुकात अमूमन लड़कों के ताल्लुकात अपने ससुराल से एक्सीलेंट और लड़कियों के ताल्लुकात द वर्स्ट। दामाद सबसे अच्छा अपने बेटों को पीछे कर देंगे और बहू कुछ ना कुछ है। याद रखिए कि ये अफरात और तफरीत है। हमारे यहाँ वो मेयार नहीं है जिस मेयार पे रिश्तों को परखा जाता है। ना बच्चियों की वो तरबियत है, वो सास की खुशी के लिए काम करती हैं। सास को ही खुश होगी जब अल्लाह की खुशी के लिए काम करेगी तो फायदा होगा। सास और बहू का रिश्ता क्यों हमारे यहाँ बिगड़ा हुआ है? उसमें दोनों का कसूर है। जब बहू लेके आते हैं तो कहते हैं 15-16 साल की अल्लड़, पतली दुबली छोटी उम्र की, हाँ बिल्कुल नाजुक अंदाम। और जब घर आती है तो कहते हैं 40 साल से ऊपर की औरत का तजुर्बा हो इसके पास, खाने का पकाने का, और आटा भी गूंधे तो हिले भी ना, और चूल्हा भी जलाए तो गंदा भी ना, घर काम भी करे तो फैले भी ना, कर ले। और सासों का एक बहुत बड़ा कसूर है, वो बहू को अपनी कार्बन कॉपी बनाना चाहती है। मैं ऐसे करती थी, मेरा ऐसा था, मैंने तो ऐसे किया, मैंने तो ऐसे किया। आप किसी के सामने कोई चीज भी रखे ना, ये खाएं, हम भी पकाते हैं, ये अच्छी हमारे घर भी बनती है। और बास दफा इस तरह की बातें सुन सुन के लोग चिड़ हो जाती है उनको, इस तरह से ये बात नहीं बनती। आपके अंदर कोई खूबी है, आने वाली खुद ब खुद अपना लेगी। और एक और कॉन्सेप्ट है, अम्मने के अब्बा बहू ले आओ, मैं काम कर करके थक गई। यानी वो बहू नहीं आ रही, गोया के कोई खिदमतगार आ रही है, कोई मासी आ रही है विदाउट पे। फिर एक और गलती, बहू नहीं ला रहे जी, बेटी ला रहे हैं। कभी ये गलती ना करें कि हम बेटी लेके आ रहे हैं। बेटी को तो आप थप्पड़ भी लगा देंगे, वो चुपके से सह लेगी, शाम को आग के गले में बाहें डाल देगी। बहू को आप जरा बात तो करके देखे, इतने मोटे मोटे आंसू बहाएगी, आंखें सूजी होंगी, रात को मियाँ कहेगा हुआ क्या, तुम्हारी अम्मा ने बात कर दी। रियली इस पे लेक्चर है एक, बल्कि अभी ये जो नई वेबसाइट बनी है उस पे एक शुरू में लेक्चर डाला हुआ है, नए रिश्तों को कैसे निभाएं। अभी थोड़े दिन पहले नॉर्वे में एक दर्स था, तुमने वहां सुनवाया शादी के मौके पर, तो इस पर बहुत कुछ कहा गया। लेकिन हकीकत है आज हमारे ससुराली ताल्लुका चूंकि रियलिस्टिक नहीं है इसलिए खराबी है। और दूसरी तरफ भी मामला खराब है, बच्चियां फिल्में देखते हैं कि इतनी कोई आइडियल, मतलब वो कहना चाहिए कि समझिए कि ख्यालाती दुनिया में जाती हैं। वो ससुराल को ससुराल नहीं होटल समझती हैं। इस्लाम ने तो कोई जिम्मेदारी नहीं डाली, सास की तो खिदमत नहीं, ससुर की तो खैर नहीं, हमें तो इनसे विरासत में हिस्सा नहीं मिलना। और दिस अब होता क्या है, वो बाद में रोते हैं, कहते हैं हम तो हिजाब वाली लाए थे, देखो ये तो क्या। नहीं, हिजाब वाली ना लाएं, आप नेक लड़की लाएं, नमाजी ना लाएं, नेक लड़की लाएं, बहुत फर्क है। दोनों तरफ खराबी है, बहू ला रहे हैं, हम कनीज नहीं ला रहे। तो आप जिस घर में जा रही हैं, आप वहां अगर खिदमत नहीं करेंगी, बात नहीं करेंगी तो खत्म। मुझे इस मौके पर याद आता है, यकीन करें हमारे अपने वालिद की ये बातें थी जो उन्होंने टिप्स देख के भेजते थे ना अपने घर से, तो वो जिसको आप कहें ना कि वो वही है जो कुरान और सुन्नत है। पहले सब माँ बाप ऐसे ही करते थे, खिदमत, आजजी, नरमी, प्यार, मोहब्बत। और इस पे शायद मेरा ख्याल है मैंने सबसे ज्यादा बोला, होम स्वीट होम, पेरेंटिंग, निकाह ए टू जी, मैरिड लाइफ ए टू जी, फिर एक शादी से पहले का, इस पे बेशुमार चीजें रिकॉर्डेड है अल्हम्दुलिल्लाह। और शायद मुझे लगता है ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, इसलिए मुझे ये पता है कि जब तक हमारे घर में सुकून नहीं है हम बाहर नहीं सुकून दे सकते। और घर के अंदर अभी जिहाद लगे हुए तो जाहे तुम भी जिहादन कबीरा, बाहर क्या होगा? मियां साहब भी आपके खिलाफ है आपके दीन के काम पे, तो आप दुनिया में क्या जाके तीर चला लेंगे? कोई भी नहीं करेगा। और खास तौर पर याद रखिए एक बात कहती हूँ, फिर इसमें से आप सुने, अगर आपका दिल चाहे इससे रेलिवेंट जो भी लेक्चर्स होते हैं अगर उनको एक साथ जमा कर दें सबक के साथ तो फायदा होगा। लेकिन यकीन करें कि अगर आप चाहते हैं ना कि आप दीन का काम करें तो सबसे पहले तवज्जो अपने घर को दें। उसमें घर की सफाई, आपका खुद साफ सुथरा होना, आपका ससुराल के साथ ताल्लुकात। ये कैसे हो सकता है कि एक बंदी है वो कहती है मेरा मियाँ सबसे अच्छा, मेरी सास सबसे अच्छी, मेरी नंदो जैसा कोई नहीं, मेरे देवर जैसा कोई नहीं, मेरे ससुर जैसा कोई नहीं? हाउ इज इट पॉसिबल? वजह यह कि उसको सबके साथ डील करना आता है। एक अल्लाह के बन जाए आपके सब रिश्ते खूबसूरत होंगे। आप एक छोटी सी असाइनमेंट बना लें, मेरे ससुराल कैसे हैं, मेरी सास कैसी हैं, पूछो ही ना, मेरी नंदे कैसी हैं, अल्लाह की बना, और मेरे देवर कैसे हैं, तौबा करें। ये क्यों जज्बे हमारे दिलों में? इसलिए ये कुछ फिल्में, कुछ गाने, कुछ पीछे से मैसेजेस ऐसे जाते हैं। जो बच्चियां शादी के बाद माँ बाप के साथ पीछे ताल्लुक जोड़े रखती हैं ना मिनट मिनट का, वो कभी अपने घरों में खुश नहीं रहती। जैसे मूसा की माँ ने बच्चे को डाला था ना दरिया में, कहा अल्लाह तू जान तेरा जान। बाज माँ बाप बड़ा पीछा करते हैं, इसलिए नहीं बसते, मैं कई ऐसे घरों के करीब जाके देखा है मियां बीवी का कोई इशू नहीं होता, लेकिन फैसलों तक बात आई, वजह क्या कि मैं इसके अम्मा से बड़ा तंग हूँ, ये जब आती है तो इसका मूड बिगड़ा होता है। बोला कि ये हमारे घरों के मसले हैं, हाँ इस मुआशरे में ये सब तरफ हो रहा है और कई कुछ है। तो अल्लाह कहते हैं कि वकाना रब्बुका कदीरा, अल्लाह तुम पे कादिर है, सब कुदरतों का उस पर, इस पर अब दिल चाहे तो आप कुछ और सुन लें, लेकिन अब इस वक्त मैं चाहूंगी कि हम इस इतना ही बात करें। मुहसिना बन के रहेंगे, मोमिना बन के रहेंगे तो बहुत मिलेगा, और जो देते हैं वो लेते हैं। किसी का एक बड़ा खूबसूरत कमेंट किसी ने भी चंद दिन पहले भेजा था, द बेस्ट वे टू लिव इज टू गिव, जीने का सबसे खूबसूरत तरीका दो, देने वाले ही जीतते हैं, खिदमत जीतती है। आप इतने दूसरों के लिए बन जाएं कि वो आपके मुख्ताज हो जाएं, वो आपके खिलाफ हिले भी ना, बस वो आपके, आप थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे लेकिन फायदा होगा। और अगर आप कहेंगे वो पहले मेरे लिए कुछ करें, तो फिर तो वो पहले आप में बात बिगड़ जाती है। तो यहां देखिए कि सूरत फुरकान है, कुरान की बातें, पीछे हमने इतना बड़ा टॉपिक पढ़ा जिहाद का, और अब यहां आके घर के ताल्लुकात ससुराल, क्योंकि ये साथ साथ चलेगा, जिंदगी के में बहुत सारी धारियां साथ साथ चलती हैं। अगर हम इन चीजों को लेकर नहीं चलेंगे ना, तो बात नहीं बनेगी। इसलिए अल्लाह ताला आप देखिए कि शिर्क की फिर एक और किस्म जो नजर भी नहीं हमें आती, उसका तस्करा करते हैं आयत 55 में, वयाबुदून मिन दूनिल्लाह, और वो बंदगी करते हैं अल्लाह के सिवा उनकी, माला यनफउहुम, जो उनको नफा नहीं देते, वला यदुर्रुहुम, और जरर भी नहीं देते। मैं इसको ऐसे सोचती हूँ, पिछली आयत से जोड़ू, कि लोगों से तारीफ लेने के लिए खिदमत करते हैं, लोगों की नजरों में बड़े बन के उनको खिलाते हैं पिलाते हैं, और कहते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें। यानी ये शिर्क वो वाला है जो तारीफ का शिर्क है, लोगों से फायदे लेने का। और बेटे बेटी की सास को सोने के कड़े पे ना दो, फिर देखो मेरी बेटी की कितनी इज्जत होती है, कुछ भी नहीं इज्जत होगी, खाक में मिल जाएगी आपकी बेटी की इज्जत, क्योंकि वो वजन से तोलेगी आपकी बेटी को, हाथ में लेके देखेगी कितने मोटे हैं, फूले हुए, अंदर वजन है कि नहीं है। जब हम इंसानों को खुश करने के लिए इंसानों को कुछ देते हैं, वो शिर्क है, सीधी सी बात है। या अलहुब्बु फिल्ला वल बुग्ज़ु फिल्ला में नहीं आता। कल जो बुक का जिक्र किया था ना, वो ये पढ़ी थी, अगर आप स्टॉल पे देखें, बड़ी खूबसूरत किताब है। यकीन करें हमारी जिंदगियों के रस्म व रिवाज के किबले बदल जाए अगर हमें ये मजमून समझ आ जाए। और आमतौर पर भी देख लीजिए तो ये शिर्क का टॉपिक तो बार बार कुरान में आया है, वकानल काफिर वला रब्बिही ज़खीरा, वकान अल काफिर वला रब्बिही ज़हीरा, और ये काफिर लोग अपने रब की तरफ से पीठ मोड़ रहे हैं, यानी ना रब की तरफ तवज्जो करते हैं ना बात मानते हैं। ज़हीर का मानी मददगार भी होता है, लेकिन यहां देखिए अला आ गया ना, अला रब्बिही तो अगेंस्ट का मानी है, ऑपोजिट, यानी काफिर लोग अपने रब के खिलाफ दूसरों के मददगार बने, इशारा फिर उधर ही अल्लाह के नबी की मुखालफत। तो कहा वमा अरसलना का इल्ला मुबशिरुम व नज़ीरा, और नहीं भेजा हमने आपको मगर बशीर और नज़ीर बनाकर, जो लोग हक का रास्ता इख्तियार करें उनको अल्लाह की रहमत की जन्नत की खबर दे दें, खुशखबरियाँ दे दें, फरोहों व रईहानों व जन्नतुन नईम, सूरत वाकिया आयत 98 में आता है कि इनको फूलों की खुशबुओं की जन्नत नईम की खुशखबरियाँ दो, और जो इनकार करते हैं नहीं मानते उनको फिर जहन्नम के अजाबों की खबर दे दो। बाकी ओ मक्का वालों, तुम्हें मेरे अंदर क्या ऐब दिखा है, कुल मा असअलुकुम अलैहि मिन अजरिन, मैं तो अब तुमसे अजर का कोई सवाल भी नहीं करता, कोई उजरत नहीं मांगता, पैसे नहीं मांगता, तनख्वाह नहीं मांगता, चंदा नहीं मांगता, हाँ मेरा एक अजर है, इसको हाईलाइट कर लीजिए, इल्ला मनशा यत्तखिज़ इला रब्बिही सबीला। वाहद मुकाम है कुरान पाक का इस आयत में, जो अमूमन अंबिया कराम के तस्करे के अंदर आती है कि मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, लेकिन यहां एक अजर मांगा गया, कहा ये कहा गया कि मैं तुमसे अजर नहीं मांगता, लेकिन हाँ इल्ला बस एक चीज तुमसे मांगता हूं, और हर दाई दीन मुबल्लिग दीन का काम करने वाला ये मांगता है क्या, मन शाअ अन यत्तखिज़ इला रब्बिही सबीला, कि बस तुम अपने रब का रास्ता इख्तियार कर लो, तुम अमल करने लग जाओ, तुम उस रब से जुड़ जाओ। तुम देखते हो सुबह शाम मैं तुम्हें दावत देता हूँ, कुरान सुनाता हूँ, लेकिन मैंने तुमसे कभी नहीं मांगा, मुझे तुमसे कुछ चाहिए भी नहीं, तुम्हारे पास है क्या जो तुम दोगे, फिर भी तुम शायर काहिन जादूगर होने का इल्ज़ाम डालते हो। कभी तुमने सोचा शायर काहिन जादूगर ये तो हमेशा मुआवजे और इनाम के लालच में रहते हैं, मैं तो बस खैर ख्वाही और इखलास के साथ तुम्हारी मदद करता हूँ, हाँ देना ना कुछ तो उसकी ये कदर कर लो कि तुम रब के रास्ते पे आओ, जो मैंने तुम्हें बताया उस पर अमल कर लो, बस तुम अपने बन जाओ, कितनी खूबसूरत बात है। अब देखिए कोई उस्ताद ऐसा है जो ये चाहे कि शागिर्द जो बात सुने उस पर अमल ना करे। माँ बाप ये चाहते हैं कि हम बच्चों को जो कहें वो ना माने, ये है सच्चा जर। और आप सोच सकते हैं कि इससे बड़ा तोहफा क्या हो सकता है किसी दाई दीन के लिए कि उसकी बात के बाद लोग रब से जुड़ जाएं। बाकी रह गए ये लोग जो आपको झुटलाते हैं, तो बतवक्कल अलल खैयिल लज़ी ला यमूत, तो आप तवक्कुल रखिए उस जिंदा हस्ती पर जिसे कभी मौत नहीं आएगी। यानी ये मक्का वाले सारे दुश्मन हो गए हैं, कोई बात नहीं, डोंट वरी, अल्लाह है, जिंदा है, उसको मौत नहीं आएगी, बस सब्बिह बिहम्दिही। और जब कभी आपका दिल दुखे इनकी बातों से, इनकी नाकदरियों से, तो रब के नाम की तस्बीह करो। आज भी अगर आप कभी दुखी हो ना कोई किसी वजह से, दीन पे अमल करने से या सीखने सिखाने या किसी वजह से दीन के नाम पर आपसे नाराज हो, जिक्र शुरू करते हैं, सुभान अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, और दिल को यकीन रखें कि वह कफा बिही बिज़ुनूबि इबादिही खबीरा, और वह अपने बंदों के गुनाहों की खबर रखने के लिए काफ़ी है। यानी जो आपको सता रहे हैं वो ये ना सोचें कि किसी को पता नहीं चल रहा, अल्लाह की ज़ात एक एक हरकत पे, एक एक बात पे नज़र रखे हुए, रिकॉर्डिंग हो रही है। ईमान वालों के नेक आमाल की भी तफसीलें हैं तो तुम्हारे बुरे काम की भी है, तो लिहाजा उससे डरो। कौन? अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा फी सित्तति अय्याम, वही के जिसने पैदा किया आसमानों और जमीन को और जो कुछ इनके बीच में है 6 दिनों में। थुम्मा इस्तवा अलल अर्शी, फिर अर्श पर करार पकड़ा। और रह गई बात, तुम्हें अभी भी नहीं समझ आई कि वो जात क्या है? तो रहमान, वो तो रहमान है, रहम वाला है। फस अल बिही खबीरा, इसके बारे में किसी खबर रखने वाले से पूछो। ये ऐसे ही जैसे एक हम कहें अल्लाह की क्या कदर है, ये तो इल्म वालों से पूछो, खबरदार से पूछो। इस एक आयत के कई डिफरेंट एंगल हैं। यानी तुम्हें आज तक अगर अपने रहमान का पता नहीं चला तो किसी साहिब इल्म से पूछो वो है कौन। तुम लोगों से, दुनियादारों से पूछते हो जो खुद दुनिया के आगे बिके हुए, वो तुम्हें क्या बताएंगे। अब देखिए इंसानी फितरत की जुस्तजू है कि वो रब के बारे में पूछे, सीखे, देखे कौन है, कैसे है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम उसकी तरफ जाओ। लेकिन मक्का वाले एक लफ्ज अर्रहमान से वाकिफ नहीं थे। देखिए कितना प्यारा नाम है ना, रहमान। झगड़ा डाल दिया हुदैबिया के मौके पे, जब अल्लाह के नबी ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी, कहा ये अल्लाह तो ठीक है, ये रहमान और रहीम कौन है, इसको मिटाओ। अल्लाह के नबी ने बहस में पड़े बगैर, इशू बनाए बगैर कहा अच्छा छोड़ो बिस्मिल्लाह लिखवा दो, कोई बात नहीं, बहस नहीं हुई। कहते थे रहमान क्यों कहते, हमें तो तुम कहते हो लात मनात उज़ा कुछ नहीं है, तो फिर ये रहमान और रहीम कौन है। भूल गए कि एक ही जात के इतने खूबसूरत रंग है। तो अल्लाह ताला कहते हैं वही ज़ाकील अलहुमसजुदू लिर्रहमानी क़ालू वमर रहमान, और जब इनसे कहा जाता है कि सजदा करो रहमान को, तो कहते थे ये रहमान कौन है। उनको ये नया नाम लगता था, कबूल नहीं करते थे, और इसको ईगो का मसला बना के कहते हैं अनसजुद लिमा तामुरुना, क्या हम उसे सजदा करें जिसके तुम हमें हुक्म देते हो। ये देखिए अना, जो तुमको बस वो करे। कुछ लोगों को ये चिढ़ हो जाती है दीन वालों से, जो ये कहेंगे वो तो बिल्कुल नहीं करना। यही है जिसको शिकाक कहा गया, और इसी जिद और तासुब की वजह से बात नहीं मानते। वज़ादहुम नुफूरा, और इसने बढ़ा दिया इनको नफरत में, यानी हक से फिर दूर भागते हैं और इनको बात समझ नहीं आती। तो यहाँ तक का बात करेंगे, अब आगे आखिर में हम देखेंगे इंशाल्लाह एक किरदार है जो जाहिद हम भी जिहादन कबीरा करने के लिए एक्सीलेंट काम है। कल इंशाल्लाह इससे हम लेकर अगली सूरत भी शुरू करेंगे अल्लाह के हुक्म से। ये दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें ज़ाया ना करें, हमें रिश्तों के मामले में, इंसानों के मामले में और अल्लाह के मामले में किसी ऐसी चीज़ में ना डाल दे कि हमारा दीन बदनाम हो। क्योंकि याद रखिए दीन बहुत जल्दी बर्बाद होता है, बदनाम बहुत जल्दी होता है। अल्लाह ताला हमारी मदद करे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी रम, कुछ कहना चाह रहे? ये लेक्चर इरम कह रही है भेज दिया गया, अगर आप में से जिसको नहीं मिलता आप उनसे रब्ता करके देख लीजिए, और उसमें यह है कि अपना काम वक्त पे करेंगे तो आपको खुद ही फायदा होगा। ठीक है, इंशाल्लाह। अभी तक किसी सिस्टर ने हदीस क्लास का वो फॉर्म फिल ना किया हो तो वो हाथ खड़ा करें। छोटा सा जो फॉर्म है कि आप आएंगे नहीं आएंगे, आपने नहीं फिल किया था, छोटी स्लिप एक छोटी सी थी जिसने फिल नहीं किया, ठीक है, वो अपना नाम उसको फिल कर लें बेसिकली, और कुछ नहीं। ठीक है, چلیے، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
جزاکم اللہ خیرن کثیر، واحسن الجزا استاد جی، الحمد للہ. جی تو اب آپ لوگوں کو اپنا ہوم ورک بھی یاد ہے نا کہ دو لیکچرز ہم نے سننے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور لیکچرز ایکچولی اور مزید اس سے ایک ٹاپک کو انہانس کر کے ایکسپلین کرتے ہیں، اور ہمیں بہت ساری پریکٹیکل ٹپس ہوتی ہیں ہمارے لیے کہ کیسے ہم اس کو اپلائی کریں اپنے اوپر. تو ان شاء اللہ آپ لوگ سب سنیے، نوٹس بھی لیجیے گا ساتھ میں، اور ان شاء اللہ پھر نیکسٹ کلاس میں اس کو دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کرے، جو پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آگے پہنچانے کی توفیق دے، اور ہر عمل جو بھی ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر کریں اس کو احسان کے درجے پر کرنے والے بن جائیں. امین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.